पाहि मां,
राम राघव पाहि मां,
राम राघव पाहि मां,
राम राघव पाहि मां।
ओहो, रामे मान उपस्यति, केवल राम को ही देख रही है। ठीक बात है, स्त्री के लिए सबसे बड़ा आभूषण उसका पति होता है। पति के बिना जितने आभूषण है वो किसी काम के नहीं होते। राम ने वास्तव में सीता से रहित होकर कितना कष्ट उठाया है, फिर भी राम सीता के मिलने की इच्छा से अभी तक प्राण धारण किए हुए हैं। अन्यथा ऐसी अनुपमा सीता, ऐसी श्रेष्ठ सीता, ऐसी जो सुख में पलने वाली सीता, इसको देख करके जरूर उनका हृदय फट सकता था, परंतु सीता मिलने की इच्छा से उनके प्राण उनके अंदर हैं। सीता कमल के समान नेत्र वाली है, राम और लक्ष्मण के द्वारा रक्षित है, राक्षसों के बीच में किसी प्रारब्ध से घिर गई है। जिस प्रकार से ओला पड़ने से कमलिनी नष्ट हो जाती है, इसी प्रकार से जनक सुता नंदिनी, जनक नंदिनी इस समय में घोर विपत्ति में फंस गई है। ये अशोक आज अपने नाम को सार्थक करेंगे, सीता के मन से शोक को दूर करेंगे। सीता के मन से शोक तो राम के आने से होगा, लेकिन मेरे मन का शोक तो दूर हो गया क्योंकि मैंने सीता के दर्शन कर लिए। अच्छा, अब यदि रावण के राक्षस मुझे मार भी दे या मैं राक्षसों के पकड़ में आ भी जाऊं तो भी अब मेरा तो कल्याण है। जैसे जटायु जी ने सीता के मरते मरते दर्शन कर लिए, राम जी के दर्शन कर लिए, उनका कल्याण हो गया, ऐसे मैं राम का दर्शन करके आ गया हूं, सीता के दर्शन हो गए हैं, राक्षस लोग मुझे पकड़ करके मार भी देंगे तो भी मेरा तो काम सफल हो गया। नहीं नहीं, मैं इतने ही काम के लिए थोड़ी आया हूं। मैं यहां अपने आप को अशोक करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो राम जी को शोक से दूर करने के लिए आया हूं। यदि राक्षस लोग मुझे मार देते हैं तो इससे राम जी का शोक कैसे दूर होगा, और राम जी का शोक दूर नहीं हो तो फिर मैं अशोक होकर के क्या करूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैंने गलत सोच लिया, मैं ये सारी खबर राम जी को दूंगा। इतने में भाई खूब बढ़िया आकाश में चंद्रमा चमकने लगा, जैसे कोई हंस है या वो पानी के अंदर दिखाई देता हो, ऐसे पूर्ण चंद्रमा आकाश के अंदर दिखाई देने लगा। और वो हनुमान जी कभी सीता का मुख देखे, कभी चंद्रमा देखे, कभी सीता का मुख देखे, कभी चंद्रमा का देखे। ओहो, सीता का और चंद्रमा का मुख तो मिलता है, क्योंकि चंद्रमा के अंदर भी एक कालिमा रहती है, अंदर छिपी हुई कालिमा, वही कालिमा थोड़ी सीता के चेहरे पर भी शोक की दिखाई दे रही है, लेकिन चंद्रमा सबको ठंडक और शीतलता प्रदान करता है। इसी प्रकार से सीता का मुख भी हमको शीतलता प्रदान करता है। परंतु ये राक्षसियां कोई तो एक आंख वाली है, कोई एक कान वाली है, कोई कर्ण प्रावरणा कान तक शरीर तक उनका कान लटकता है, कोई बिना कान की है, और कोई कोई के कान तो है लेकिन ये ऊंची नीचे होकर के टेढ़े मेढ़े कान है, और कई मस्तको श्वास नासिका, कई के की नाक है वो यहाँ मुंह के पास होने होकर माथे के ऊपर नाक है, वहां से वो शू 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 करती रहती हैं। और कई ऐसी है तनु दीर्घ शिरोधराम, बहुत ऊंचा, देखो ये गर्दन का भाग तो बहुत ऊंचा है और बेडोली सा सिर बनाया हुआ, इतना ऊंचा उसका सिर, शरीर तो थोड़ा ठीक ना, लेकिन ये गला जिसका बहुत लंबा हो, कैसी वो लगे ऐसी है। और किसी के केश है ही नहीं, किसी के ध्वस्त केश, बिखरे हुए केश है, और कई केश कम्बल धारिणी, केशों का ही कम्बल बना लिया, खूब केश बढ़े, इधर ओढ़ लिया सर्दी लगे, इधर ओढ़ लिया केशों को। और लंब कर्ण ललाटन छे, कान भी लंबे, ललाट भी बड़ा लंबा, और कोई के जो ओष्ट है बहुत मोटे हुए हैं, और बहुत मोटे ओष्ट, और उनके ओष्ठों के आगे भी दांत निकले हुए, और कई ऐसे हैं कि जिनके होठ बहुत ही पतले हैं, कोई बहुत छोटी है तो कोई बहुत नाटी है, तो कोई कैसी है, तो कोई भुग्न वक्त्राम की मुंह है वो एकदम तड़ासा हुआ हुआ है, और कई विकृत हुई हुई है, कोई एकदम काली है, कोई एकदम क्रोधी क्रोधी इसमें ही बोलती है, कभी शांति से बोलती नहीं है, किसी का मुख वराह जैसा, किसी का मुख हिरण जैसा, किसी का मुख भैंस जैसा, और किसी का मुख बकरी जैसा, किसी का मुख गीदड़ी जैसा, किसी का मुख हथनी जैसा, किसी का मुख ऊंट जैसा, किसी का मुख गधी जैसा, किसी का जो है कान वो गोकर्ण हस्तिकरणी माने हथनी जैसा कान, किसी के बंदर जैसा कान, ऐसे किसी की बहुत नाक है, किसी की पिचकी हुई नाक है, और किसी के पैर है तो वो पैर बहुत पतले पतले हैं, शरीर वगैरह तो खूब मोटा है, पैर आके देखे तो बहुत पतले हैं, और किनी किनी से पैरों से चलाई न जाए, और पेट वगैरह पतला लेकिन पैर बहुत मोटे मोटे हैं, ऐसे इन डरावनी डरावनी जो राक्षसियां हैं, इन राक्षसियों के हाथ में तरह तरह के अस्त्र हैं, और पानम सुरा मांस सदा प्रियः, और सदा ही ये मांस खाने वाली सुरा पीने वाली ये राक्षसियां सीता जी के चारों तरफ सीता जी के पास में है। निष्प्रभाम शोक संतप्ताम, इनके बीच में सीता जी ऐसी मालूम दे रही हैं कि जैसे कोई आकाश में से पुण्य आकर के गिर गया हो, जिस प्रकार से कोई राक्षसों के बीच में तपस्विनी आकर के बैठी हो, ऐसी सीता वहां पर मालूम देती है। हनुमान जी महाराज वहां पर ऐसा देख रहे हैं कि लताम अकुसुमाम इव, एक ऐसी लता है सीता जिसमें कोई फूल नहीं है, मेले कुचेले कपड़े हैं, और वो जो आभूषण है उन आभूषणों की वो दिव्य शोभा नहीं रही। सीता जी ने हनुमान जी को इस अवस्था में देखा, और इस अवस्था में सीता जी बड़ी त्रस्त डरी हुई, और उन वृक्ष की छाल को भी काम में लेने वाली, इस प्रकार से सीता जी को देखा, देख करके हनुमान जी के मन में एक ही बात की बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने सीता जी के दर्शन कर लिए हैं, इससे सीता इसलिए हनुमान जी के आंखों से नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू आ रहे थे, और उन्होंने वहां सीता जी को प्रणाम किया, और राम जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, और हनुमान जी महाराज को सीता के दर्शनों से महान आनंद का अनुभव हुआ। अब इधर थोड़ी रात्रि बाकी थी, उस समय में राक्षस राज रावण जो है वो रावण जगा, और जग करके और जो है वो भाई अशोक वाटिका की ओर आ रहा था। इधर क्या हुआ कि अभी तक तो हनुमान जी ने कुछ देखा नहीं, हनुमान जी ने देखा कि थोड़ी रात बाकी है, तो बड़े बड़े विद्वान लोग उस समय में ये मंत्रों का उच्चारण करते हैं, और वे ब्रह्म राक्षस बने हुए तरह तरह के यज्ञ करके और उसमें आहुति देते हैं, मांगलिक शब्द बोलते हैं, इस प्रकार से उनका उद्घोष हो रहा है। इधर रावण जब वो लंका के अपने प्रासाद से महल से रवाना होकर अशोक वाटिका की ओर चला, तो उसके सामने मांगलिक वाद्यों का उच्चारण हो रहा है, श्रोत्र मनोहर ही शब्द ही कानों को प्रिय लगे ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, राक्षस राज लंका नरेश महाराज रावण की जय हो, ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं। रावण बड़ा प्रसन्न होते होते चल रहा है, लाल माला पहन रखी है, और मन में वो सीता का चिंतन करता है, उसकी आंखें एकदम लाल लाल हुई हुई है, और जो है ऐसा लगता है कि रावण के आंखों के अंदर जो है कोई ललाई डाल दी गई हो। असल में रावण उस समय अपने आप को छिपा नहीं सका, माने अपना जो पानोन्मत्तता है उसको वो छिपा नहीं सका, सब सारे शरीर में आभूषण, लंबा चौड़ा उसका शरीर, और सब प्रकार के फूल उसके वहां लगाए हुए, अच्छी माला पहना हुआ, और वो जो है उस अशोक वाटिका में प्रवेश करता है, जिसमें पक्षियों की अब मधुर आवाज आ रही है, और वृक्षों के अंदर से पक्षी लोग मानो रावण का आह्वान करते हो, ऐसे अशोक वाटिका के अंदर वो रावण प्रवेश कर रहा है। सैकड़ों सैकड़ों स्त्रियां उसके आगे और पीछे चल रही हैं, गंधर्वों की कन्याएं और देवताओं की कन्याएं उसकी सेवा कर रही है, अपने हाथ में बड़े बड़े मशाले ले लेकर के रावण के सामने चल रही है। कई स्त्रियां रावण के ऊपर पंखा कर रही हैं और कई जो है मंडलाकारी होती हुई चारों तरफ से रावण को घेरी हुई है। कई रावण के लिए पान ला करके रखती हैं कि लो आप पान ले हो, और कोई उनके लिए जो वस्तु चाहे वो वस्तु उपस्थित करती हैं। रावण के पीछे एक राजहंस के समान छत्र लगा हुआ है, छत्र का डंडा सोने का बना हुआ है, और रावण को चलते 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 यूं थोड़ी थोड़ी नींद भी आने लगती है, और वो स्त्रियां भी चलती चलती यूं नींद के अंदर ही चलती है, पर रावण को संभालने वाली और स्त्रियां संभालती भी रहती हैं। उनके संभालने से रावण फिर वापस अपने आप को संभालता है और फिर वो चलता है। स्त्रियां जो कि रावण के साथ आ रही थी उनके स्त्रियों के आभूषणों की आवाज आती है, और उस समय में उनके चलने से शरीर में जगह जगह पसीना हो रहा है और बार बार वे थकी भी जा रही है। नींद भी है, थकावट भी है, और रावण का ध्यान भी रखना है। इस प्रकार से चलती चलती वे स्त्रियां रावण के साथ अशोक वाटिका में आ रही है। असल में रावण इस समय में सीता को देखने के लिए अशोक वाटिका में आया है, और उन स्त्रियों के जो नूपुर हैं उन नूपुरों की आवाज आ रही है। हनुमान जी ने सीता को देखना तो बंद किया और उधर देखना चालू किया कि ये क्या माजरा है, क्या है, देखे तो सही, ये नजारा भी तो देखे। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि उस रास्ते से जो है मसाले अब अंदर आ रही है, और बहुत सुगंधित जो है तेल और इत्र वगैरह इनकी कुप्पियां भरी भरी वो आगे से आगे चल रही हैं, सारे वातावरण को सुगंधित कर रही हैं। रावण के आगे आगे बहुत से चंदन आदि के जल को छिड़का जा रहा है ताकि मार्ग में सुगंधी बनी रहे, और रावण को कोई किसी प्रकार से कहीं पर भी किसी प्रकार से कठिनाई का अनुभव न हो। और अशोक वाटिका के अंदर आने के बाद भी वो पुष्प वाले वृक्ष हैं, उन वृक्षों से चलते चलते रावण के ऊपर कभी यहाँ टप कभी इधर से टप ऐसे करके फूल गिरते हैं, उनकी सुगंधियां आती हैं। मसाले लिए वे आ ही रहे हैं, वो देखते हैं, हनुमान जी सोचते हैं कि कौन है, किधर से आ रहे हैं ये, इनका विचित्र आभूषण वाली कौन है ये। तब देखता देखते देखते कहा हो इनके बीच में घिरा हुआ, अरे रावणो यम, ये तो वो रावण ही है, यही तो कपड़े पहने हुए अभी पड़ा हुआ था वहाँ, और यह बुरी तरह से जो है लंबी लंबी श्वास ले रहा था वही रावण, सीधा ही उठ करके आ गया। ओहो ये रावण यहाँ आया है, अच्छा यहाँ तो और किस बात के लिए आया होगा, सीता को डराने धमकाने के लिए आया होगा, अरे तब तो ये जरूर यहाँ हमको बात सुननी चाहिए। देखे रावण क्या बोलता है, देखो आदमी की आधी से ज्यादा ताकत उसकी वाणी से मालूम चलती है, कौन आदमी कैसा है उसके हृदय का इतना ज्ञान नहीं होता, उस आदमी की वाणी सुनो और उस आदमी की वाणी थोड़ा छिप करके सुनो, क्योंकि हमारे सामने तो रावण और ढंग से बात करेगा ना। आते अब यहाँ रावण की क्या बातें होती हैं, कैसे सीता को बोलता है, ये तो बात भाई बहुत देखने की है, अरे बड़े अच्छे मौके पर आए, आज हम सीता को भी देख लिए रावण को भी देख लिए, अब रावण सीता को क्या बोलता है ये भी हम बोलते हैं, ये भी हम देखते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज जो थोड़े से नीचे थे वो हनुमान जी महाराज थोड़े और ऊपर चले गए, ऊपर जाकर चारों तरफ, क्योंकि इन लोगों के पास में मशाले हैं, मशाल माने जो है अग्नि पैदा करने के गैस वगैरह होते ना, वो खूब लाइटें की हुई, वो लाइटें की हुई उनके पास, क्या पता किसके प्रकाश में मैं दिखिया हूं, तो ऐसी जगह पर बैठ के दुबक करके कि चारों तरफ अपने पत्ते ही पत्ते हैं, पत्ते ही पत्ते हैं, उन पत्तों में से केवल अपने नेत्र से देख सके बस इतनी सी जगह उन्होंने खुली रखी, बाकी सब जगह को उन्होंने ढक लिया, और नेत्रों में भी इस प्रकार से रखा कि कोई प्रकाश की अवस्था में न देखा जाए, क्योंकि नेत्र में भी लाइट होती है, प्रकाश होता है, वो मिल जाने पर पता चल जाता है। ऐसे अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित रख लिया और देखने के देखिए क्या होता है, रावण है चलते चलते वो जाकर के सीता जी के उधर ही जा रहा है। सीता जी जैसे हवा तेज चलने पर केली का वृक्ष वो कांपता है, ऐसे कांपने लग गई। सीता जी यूं बैठ गई और बैठ करके अपने कपड़ों से अपने शरीर को पूरा ढक लिया और ढक करके और वो यूं आंख बंद करके राम जी का चिंतन करने लगी। इतने में ही दशग्रीव वहां आया, अनेक राक्षसियों से घिरा हुआ। उसने देखा कि सीता जमीन पर बैठी हुई है, ऐसा लगता है कि मानो किसी बहुत बड़े वृक्ष की, कल्प वृक्ष की कोई शाखा पड़ी हुई हो। सीता को देखा जैसे कोई मृणाली है, वो पंख दिग्धा हो गई हो, वो कमल की जो नाल है वो चाहे कीचड़ में पड़ गई हो, ऐसे सीता को देखा। और सीता रो रही है, रोती हुई सीता को देखा। और जिस प्रकार से कोई गरुड़ के पंजे में आई हुई सर्पिणी होती है और वो जिस प्रकार से छटपटाती है, ऐसे पृथ्वी पर छटपटाती हुई राम के लिए छटपटाती हुई सीता को देखा। और ऐसा देखा कि मानो आकाश से श्रद्धा गिर चुकी हो, ऐसा देखा कि मानो दिशाओं कोई प्रदीप्त दिशा आकर के गिर गई हो, ऐसा लगा कि मानो आकाश से पद्मिनी आकर के गिर गई हो। इस प्रकार से सीता को देखा और भावीन रघु मुख्यस्य दशग्रीव पराभवम, ऐसा देख करके रावण आगे बढ़ा। हनुमान जी महाराज सीता जी को देख ही रहे हैं, देखते देखते हनुमान जी ने नेत्र बंद करके और ध्यान किया कि हे राम, मेरी हार्दिक इच्छा है कि इसी रावण को इसी स्थान पर माने लंका में ही आप अपने तीखे बाणों से नष्ट करके सदा के लिए इसको यमलोक में भेज दो, दशग्रीव का पराभव हो और राघव का यहाँ पर जो है जीत हो, इनकी इनकी विजय हो, ऐसी वो हनुमान जी महाराज मनी मन से कामना करने लगे। रावण सीता जी के पास आया, सीता के पास आकर के रावण कहने लगा, सीते क्या बात है, मेरे यहां आने पर तुम अपने आप को छिपा रही हो, तुम अपने आप को जमीन में गाड़ना चाहती हो, तुम मेरी आंखों के सामने ठहरना नहीं चाहती हो। सीते ऐसा मत करो, तुम्हारे अंदर अनेक गुण है, तुम सारे संसार में बड़ी श्रेष्ठ हो, लेकिन मुझे देखकर जब तुम ये इस प्रकार से अपने को मुझसे अलग करना चाहती हो, यही आपकी गलती है। सीता जी देखो, यहां पर कोई मनुष्य नहीं आ सकता, ये इच्छा अनुसार रूप बनाने वाले राक्षसों का स्थान है। और व्यपसर्पतु ते सीते, देखो किसी प्रकार से आप मुझसे भयभीत मत होना, मुझसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सीते आपके मन में ये भाव आता होगा कि मैं दूसरे के हाथ में कैसे चली जाऊं, देखो परस्त्री गमन है या परस्त्री का हरण है, ये राक्षसों का स्वधर्म है, इसके अंदर राक्षसों को कभी पाप नहीं लगता है, ये तुम मनुष्यों की सी बातें यहाँ क्यों करती हो, देखो ये पाप लगता है, और ये रावण बोलने वाला कुछ भी बोले हो, लेकिन ये बहुत पाप की बात है। रावण अपनी तरफ से सीता को फुसलाने के लिए बोलता है, कहता है हे सीता जी देखो, तुम हमारे में कोई भय मत रखो, तुम हमें प्रेम प्रदान करो, क्योंकि प्रेम संसार में कपड़े मेले हो गए, तुम हरदम कुछ न कुछ ध्यान करती रहती हो, तुम शोक में डूबी हुई हो, न तुम माला स्वीकार करती हो, न तुम शरीर पर चंदन लगाती हो, न तुम कोई हमारे आभूषण पहनती हो, और न ही तुम उत्तम उत्तम स्थानों पर चलती हो, न तुमको गीत सुहाता है, न तुमको नृत्य सुहाता है, न तुमको कोई जो है बजाना सुहाता है। सीता जी उठिए और हमारे महलों में चलिए, जिन चीजों के बिना तुम तड़प रही हो वो सब चीजें मेरे यहाँ पर बड़ी सुगमता से मिलेंगी। देखो सीते, संसार में विधाता जो चीज बनाता है वो उन योग्य व्यक्तियों के लिए बनाता है, आपके लिए लंका योग्य है, यहाँ की सबसे ऊंची स्त्री हम आपको बनाना चाहते हैं, संसार के अंदर हमारे पास और आपके मन में कि मुझे जनक जी क्या कहेंगे, आप कहो तो मैं यहाँ रत्नों का बहुत बड़ा संग्रह आपके जनक जी को दे करके जनक जी की जबान को सदा के लिए बंद कर सकता हूँ, जनक जी के पास खूब धन पहुँचा देता हूँ। और देखो आप यदि ये सोचते हो कि राम वो हमको क्या कहेंगे, अरे भीरू राम यहाँ कहाँ आने वाला है, यहाँ कोई मनुष्य नहीं आ सकता, देवता नहीं आ सकते, गंधर्व नहीं आ सकते, यक्ष नहीं आ सकते, हमारे बिना कोई राक्षस भी नहीं आ सकता, इसलिए अभी तो समय है, आप हमको स्वीकार कर लो, अन्यथा हे सीते समय निकल जाने के बाद आप हमको बोलती रहोगी कि हे रावण मैं आपको स्वीकार करती हूँ, फिर उस समय हम स्वीकार करें न करें क्या हो फिर तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, इसलिए यथेष्ट धन ले हो, यथेष्ट भूख पदार्थ ले हो, यथेष्ट पृथ्वी ले हो, और में बहुत स्त्रियां हैं, हमको स्त्री की जरूरत नहीं है, हमको सीता की जरूरत है, इसलिए चूंकि आप सीता हो हमारे यहाँ तो अप्सराएं भी आती है लेकिन हमें सीता नहीं मिली, सीता मिलनी चाहिए। और देखो सुब्रू हमारे यहाँ रत्नों की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, और कुबेर भी मेरे यहाँ पर आकर के हार मानता है, अतएव मेरे पास किस चीज की कमी है, राम के पास न बल है न बुद्धि है न राज्य है न धन है न संपत्ति है, अतएव हमारे साथ रहो, भोगों का संचय करो, धन को अपने पास में रखो, यहाँ शासन करो, और बची हुई जो जिंदगी है उसमें तुम अपने खूब खुशहाली खुशहाली इकट्ठी करो, और मेरे साथ इन जंगलों में खूब आराम से घूमो, पर्वतों में घूमो, समुद्र की शोभा देखो, आकाश की शोभा देखो, सब तरफ तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको बड़े अच्छे अच्छे लोगों के दर्शन कराएंगे। सीता जी ने ये बात सुनी, उस समय में एक तिनका लिया, तिनका लेकर के और वो तिनका को सामने करके आंख बंद करके राम जी के चरणों का ध्यान करके सीता कहने लगी, दुष्ट तेरे इस गंदे सड़े गले मन को यहाँ से हटा दे, तुम्हारी बातों से मुझे बड़ी घृणा हो रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, नमाम प्रार्थना तुम मुझे ऐसी प्रार्थना करते हो, तुम्हें ये प्रार्थना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, तुम सिद्धि में वो पाप कृत, अरे पापी व्यक्ति कभी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, ऐसे तेरे जैसा पापी मुझे प्राप्त कर सकता है, अकार्य कार्य तू कर सकता है रावण, लेकिन मैं एक पत्नी वाली एक पति व्रता सीता राम को छोड़कर तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकती हूँ, तुम्हें इस प्रकार से बोलते हुए लज्जा नहीं आती, रावण तेरा मुंह देखना ही पाप है, ऐसा करके सीता जी ने अपना मुंह मोड़ लिया, मुंह मोड़ करके और कहने लगा, रावण तुम विचार नहीं करते हो, मैं किसी की परिणीता स्त्री हूँ, अतएव मैं अपने पति के रहते हुए या न रहते हुए भी दूसरे पति को स्वीकार करूं, ये तुम्हारे यहाँ धर्म होता होगा, मैं इस धर्म में रहने वाली नहीं हूँ, साधु धर्मम अवेक्षस्व साधु साधु व्रतम चर है, रावण तुम अपने मुंह से स्वयं कहते हो कि ये जवानी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं है, ये जवानी किस बात को लेकर के है, ये जवानी धर्म को देखने के लिए है, रावण ये जवानी में जितना धर्म होगा बुढ़ापे में नहीं हो सकता, जाओ तुम धर्म का पालन करो, और तुम्हारी प्रारब्ध से जो तुम्हें स्त्रियां मिली है उन्हीं में ही तुम रहो, मेरी और दृष्टिपात मत करो, जो व्यक्ति अपने स्त्रियों में संतुष्ट नहीं रहता है वो व्यक्ति आगे जाकर स्त्रियों से पराभव को प्राप्त हुआ नरक में जाता है। रावण तुम्हारे यहाँ कोई संत नहीं है, तुम्हारे यहाँ कभी सत्संग का आयोजन नहीं होता है, तुम्हारे यहाँ कोई उपदेश देने वाला कोई लंका में है ही नहीं, तो आप लोगों की बुद्धि में धर्म की बात बैठा है, नहीं है कोई, तभी तो तुम ऐसी बात करते हो, तभी तो तुमको संसार के भोग सत्य लगते हैं, तभी तो तुमको न लोक अच्छा लगता न परलोक अच्छा लगता, केवल भोग अच्छे लगते हो, ओहो तुमने राक्षसों के अभाव के लिए राक्षसों के विनाश के लिए मुझे यहाँ लाकर बहुत बड़ा पाप किया है, तुम्हारे मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होंगे रावण, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ ये लंका नष्ट होगी, ये लंका धू धू करके जलेगी और लोग तुम्हारे पर थूकेंगे, तुम अपने वंश सहित नष्ट हो जाओगे, रावण तुमको भविष्य का ज्ञान नहीं है, तुम वर्तमान की भूख देखते हो, आगे के तुम परिणाम क्या होगी उस पर विचार नहीं देखते। इस प्रकार मूर्ख व्यक्ति लड्डू का स्वाद देखता है लेकिन उसके अंदर रखा हुआ जहर उसकी मृत्यु के लिए कारण है इस बात को वो नहीं देखता। इसी प्रकार से तुम मुझे देखते हो लेकिन मेरे पीछे तुम्हारा नाश है इसको तुम नहीं देखते। तुम मुझे इन रत्नों से लुभाते हो, मणियों में लुभाते हो, ये तो सब पत्थर की चीजें हैं रावण, इनमें मैं कैसे लुप्त होंगी। मेरे विचार में अभी एक समय तुम्हारे पास बाकी है। रावण एक बात कहती हूँ, तुम हमें अधर्म की बात कहते हो, हम तुम्हें धर्म की बात कहते हैं। रावण तुम मुझे जिस प्रकार से लाए थे उससे विशेष सम्मान करते हुए मुझे यहाँ से ले चलो और ले जा करके आप जहाँ भी राम हैं उन राम के सामने मुझे सुपुर्द कर दो और राम के चरणों में तुम अपना सिर रख के कह दो कि हे राम मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, रक्षा करो राम रक्षा करो, और ऐसा करने पर राम तुम्हें क्षमा कर देंगे, इस विषय में मेरे लेश मात्र भी संदेह नहीं है। रावण ये जीवन मेरी करना हो, तुम कहते हो कि समय सदा एक जैसा नहीं रहता, अतएव हम तुमको बोलते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता तो ऐसा ही करो, क्योंकि बार बार ये समय मिलने वाला नहीं, तुम मुझे राम के पास ले चलो और वापस मुझे राम के सुपुर्द कर दो, अपने गलती के लिए तुम राम से क्षमा याचना कर लो, राम तुम्हारी तरफ विचार ही नहीं करेंगे। मैं राम की भारिया हूँ, अतः ये बात कहने के योग्य हूँ। रावण मैं बहुत दुखी हूँ और इस दुखिनी का इस प्रकार से तुम अपमान करते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत कष्ट की बात होगी। तेन मैत्री भवतुते यदि जीवितु मिच्छसि, इसलिए मैं कहती हूँ उस राम के साथ तुम्हारी मित्रता हो जाए। वो शरणागत वत्सल है, मुझे प्राप्त करके राम शोक से दूर होकर तुम्हें क्षमा प्रदान कर देंगे, नहीं तो भाई तुम्हारे लिए तुम तैयार हो जाओ, राम के वज्र जैसे बाण तुम्हारी छाती के अंदर आकर के धंस जाएंगे, लंका लहू लुहान हो जाएगी, यहाँ पर मांस का और खून का कीचड़ मच जाएगा, यहाँ पर खून की नदियां बहेंगी। ये बिचारे भोले भाले राक्षस जो तुम्हारे वेतन के ऊपर पलने वाले हैं, तुम्हारे रोटियां खाते हैं, ये राक्षस बिचारे यूं ही मर जाएंगे, इनके बाल बच्चे मर जाएंगे, इनकी स्त्रियां मर जाएंगी, कितने को तुम कष्ट दोगे। राम रूपी गरुड़ एक महान गरुड़ है और तुम जितने भी राक्षस हो सबके सब सर्प के समान हो, एक गरुड़ अनेकों सर्पों को खा जाता है, उसी प्रकार से तुम मारे जाओगे। इसलिए तुम जो है अच्छे क्षण कैसे आ सकते हैं, इन जीवन के क्षणों में अच्छा काम कैसे कर सकते हैं, इस पर तुम विचार करो। रावण तुम अपनी बड़ी बड़ी बातें हाँकते हो लेकिन तुमने इतना विचार नहीं किया कि एक अबला को मैं छल करके आश्रम से ले जा रहा हूँ, मेरे पास बल इतना है राम और लक्ष्मण को मार करके ले जाऊं, ऐसा तू सोचता तब फिर भी मैं सोच सकती थी कि कोई बात नहीं है, ये अपने पौरुष के ऊपर जरा विचार तो करता है, लेकिन नहीं तुमने तो राम और लक्ष्मण की गंध भी नहीं आने दी, और इतना ही नहीं तुमने तो मारीच के बहाने से राम और लक्ष्मण को बहुत दूर भिजा करके एक डरपोक हुआ, अरे कोई सिंह से डर करके जैसा कोई कुत्ता कहीं छिप करके मकान में घुस जाए और घुस करके उस वस्तु को उठा लाए, ऐसे तुमने कुत्ते के समान प्रवेश किया, दुबके दुबके, और कुत्ते के समान तुमने छल किया और कुत्ते के समान तुमने मेरा हरण किया। रावण अभी भी समय है, तुम जो है विचार कर लो। देखो ग्रीष्म ऋतु के अंदर जिस प्रकार से प्रतिपल तालाब का पानी सूखता है, इसी प्रकार से प्रतिक्षण मनुष्य की आयु समाप्त होती है, इस आयु के रहते रहते तुम विचार कर लो, अन्यथा तुम मारे जाओगे। राक्षस